दिन भर 25 सितंबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फतल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के प्रदर्शन ने राजनीतिक रूप लिया।
मेरा तो ये सवाल था कि रात के अंधेरे में बच्चियों के ऊपर लाठी, क्या यही है 56 इंच की छाती? जिस पर्व पे नवरात्रि में कन्या पूजन होता है, उस पर्व पर आपने कन्याओं का लाठियों से पूजन किया।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला।
राजनीति, कांग्रेस और राहुल गांधी जी इस देश को देना चाहते हैं वंशवाद की तुष्टिकरण की, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नकारती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं महत्वपूर्ण ऐलान, होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन समाप्त हो गया है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं कल यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर भी बीएचयू पहुंचे थे, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया था। अमरीकी विश्वविद्यालय की एक शोध छात्रा से बलात्कार के आरोपी फिल्म निर्देशक महमूद फारूकी को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही की अविश्वसनीयता के कारण आरोपी को संदेह का लाभ मिलता है और उन्हें बरी किया जाता है। पिछले साल फारूकी को ट्रायल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय की शोध छात्रा का आरोप था कि फारूकी ने 2015 में दिल्ली स्थित अपने घर में उनका बलात्कार किया था। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने कहा है कि उनके जो मतदाता साथ छोड़कर धुर दक्षिणपंथी पार्टी की ओर गए हैं, वो उनको वापस लाना चाहेंगी। रविवार को हुए चुनाव में आप्रवासी विरोधी AFD पार्टी देश के तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई थी। मार्केल ने कहा है कि कई लोग सोचते हैं कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वह उनकी समस्याओं को हल करना चाहती हैं। बेशक हम फ्री डेमोक्रेट्स और द ग्रीन से बात करेंगे, लेकिन मैं सोशल डेमोक्रेट्स को इसमें शामिल करना चाहती हूँ। यह जर्मनी के लिए अच्छा है कि उसे अच्छी और स्थिर सरकार मिले। मैंने सुना है कि SPD ने कल ये कहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए और इस विचार को कार्यकारी समिति द्वारा साझा किया गया है। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल के शब्द। एक समय दुनिया की सबसे वजनी महिला मानी जाने वाली मिस्र की ऐमान अहमद अब्द अल अती का आज निधन हो गया। एक समय उनका वजन तकरीबन 500 किलो था। ऐमान 25 साल बाद अपने घर से निकली थीं और वह सर्जरी के जरिए वजन कम कराने के लिए भारत आई थीं। इस समय उनका इलाज UAE के एक अस्पताल में चल रहा था। ऐमान दिल और गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त थीं। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि क्रीमिया प्रायद्वीप पर 2014 में रूस के अधिग्रहण के बाद मानवाधिकार परिस्थितियां काफी खराब हुई हैं। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, हिरासत में लेने और यातना देने के मामले सामने आए हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने यूक्रेन की जनता को रूसी नागरिकता लेने के लिए मजबूर करने की आलोचना की है। इराकी कुर्दिस्तान में स्वतंत्रता के लिए होने वाले विवादास्पद जनमत संग्रह के मद्देनजर ईरान ने कुर्दिस्तान से लगी सीमा को बंद कर दिया है। तुर्की ने भी कहा है कि वह इस क्षेत्र से लगी अपनी सीमा को बंद करेगा। तुर्की और ईरान को डर है कि इस जनमत संग्रह से उनके कुर्द अल्पसंख्यकों में अलगाववाद की भावना ना जाग जाए। आज़ादी के लिए जनमत संग्रह का मतलब नहीं है कि हम कुर्दिस्तान की आज़ादी की घोषणा कर देंगे। हमारी पड़ोसी देश और इराक की केंद्रीय सरकार जानती है कि हम केवल अपने लोगों की इच्छा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम लोकतांत्रिक मार्ग और बगदाद के साथ बातचीत के बाद आज़ादी की प्रक्रिया की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये थे इराकी कुर्दिस्तान के प्रधानमंत्री नेशिरवान बरजानी के शब्द। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जल्द चुनाव कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण कोरिया से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए उन्होंने कहा है कि उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए उन्हें एक नया जनादेश चाहिए। इसको उत्तर कोरिया के संकट के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए आबे के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शनिवार देर रात हुई पुलिस कार्रवाई के बाद विश्वविद्यालय के गेट पर चल रहा छात्र छात्राओं का धरना प्रशासन ने फिलहाल खत्म करा दिया है, लेकिन अब इस मामले में राजनीतिक गर्मी बढ़ने लगी है। समाजवादी पार्टी का एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज वाराणसी पहुंचा और विश्वविद्यालय के गेट पर काफी देर तक नारेबाजी हुई। इससे पहले रविवार शाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर को उनके तमाम साथियों के साथ विश्वविद्यालय जाने से रोक दिया गया तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। इस सरकार ने इस मामले में कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। दिन भर का ब्यौरा सुना रहे हैं समीर आत्मन मिश्र।
कोई भी उम्मीद नहीं है नेताजी की, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं कि यहाँ पर जब तक हम।
सोमवार सुबह से ही बीएचयू गेट पर छात्राओं के धरने की जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ले ली थी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को वहां स्थिति का जायजा लेने भेजा था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े बीएचयू के कुछ छात्र सुबह से ही वहां नारेबाजी करने लगे। प्रशासन ने इसे देखते हुए मुख्य द्वार बंद करा दिया था और आने जाने वाले लोगों को इससे काफी परेशानी भी हुई। वहां मौजूद कुछ महिलाएं बेहद गुस्से में थीं और गेट के बाहर ही वो बैठकर नारेबाजी कर रही थीं।
शिक्षा के मंदिर में घुसकर महिलाओं को, छात्राओं को, बच्चियों को लाठियों से खदेड़ते हुए मारा है। इस बर्बरता पूर्वक इस कृत्य की जितने भी निंदा की जाए, इनको तो नैतिकता के आधार पे तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।
और मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है उनका नारा।
महिला को रक्षा मंत्री बनाते हैं एक तरफ, और वही महिलाओं के साथ उनका संसदीय क्षेत्र में इतना गलत होता है।
ये चूड़ी मोदी जी पहन ले, मोदी जी प्रदेश में चला रहे हैं।
वहाँ मौजूद बीएचयू के पूर्व छात्र और सपा नेता मनोज राय ने शनिवार रात महिला छात्रावासों में हुई पुलिस कार्रवाई की ये कहकर निंदा की।
मेरा तो ये सवाल था कि रात के अंधेरे में बच्चियों के ऊपर लाठी, क्या यही है 56 इंच की छाती? भाई आप 56 इंच की छातियों की बात करते हो, आप सड़क छोड़ करके दुर्गा मंदिर जा रहे थे, जिस पर्व पे नवरात्रि में कन्या पूजन होता है उस पर्व पर आपने कन्याओं का लाठियों से पूजन किया, पांव पूजन की जगह, इससे खराब बात क्या होगी? आप धर्म को मानने की बात करते हैं, आप ठेकेदार बनते हैं।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीएचयू गेट पर काफी देर तक हंगामा करते रहे और बाद में प्रशासन ने उन लोगों को बसों में भरकर वहां से हटा दिया। इससे पहले रविवार देर शाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर भी अपने साथियों के साथ विश्वविद्यालय पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। इस बीच सरकार ने भी छात्राओं पर हुए बल प्रयोग को लेकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने वाराणसी मंडल के आयुक्त से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा वाराणसी में लंका के थाना प्रभारी, भेलूपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी और एक एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट को काम में लापरवाही बरतने के चलते हटा दिया गया है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी वाराणसी।
इस बीच विश्वविद्यालय में 2 अक्टूबर तक दशहरे की छुट्टियां कर दी गई हैं। छात्रावासों में रह रही ज्यादातर लड़कियां तो अपने घरों को चली गई हैं, लेकिन अभी कुछ वहां मौजूद हैं। छात्र छात्राओं दोनों में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति है कि उनसे छात्रावास खाली कराए जा रहे हैं। हालांकि खुद कुलपति ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्रावास खाली कराने संबंधी बात कोरी अफवाह है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने बीएचयू के महिला महाविद्यालय छात्रावास में कुछ छात्राओं से बात की और सबसे पहले शनिवार देर रात हुई पुलिस कार्रवाई के बारे में पूछा।
रात को हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो गया था, तो हम लोग अंदर आए। लाठी चार्ज के वजह से हम लोग सब लोग अंदर आ गए थे। तो फिर उसके बाद अगले दिन हम लोगों को ऐसा पता नहीं, थोड़ा सा प्रेशर की तरह हुआ कि निकल जाइए वरना सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप लोग की है, पेरेंट्स आपके। अगर
किसने ये बात किसने कही, किस तरह का कोई रिटेन आया था कि आपको खाली करना है?
नहीं, हमारे हॉस्टल में कोई रिटेन नहीं आया था, लेकिन बाहर के हॉस्टलों को खाली किया गया और वहाँ पे नोटिस भी लगाया था। तो हमारे में इमोशनली कह रहे हैं कि सेफ्टी पर्पज से तुम चले जाओ, और ऐसा कहा जा रहा है कि
मतलब वार्डन ने या
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं नाम नहीं लूंगी पर्टिकुलर किसी का, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी से आया था और वीसी की तरफ से ऑर्डर आया।
मतलब रूमर्स तो ये भी फैले थे कि मतलब लाइट कट जाएगी और वाटर सप्लाई रुक जाएगी
और नेट चला गया था कुछ देर के लिए और हमारी बीएचयू बस की एक साइड थी उसे ब्लॉक कर दिया गया।
गलती तो हर किसी से हो सकती है ना। एक एक फोटो क्या मतलब गलती से उन्होंने सेंड कर दी कि मतलब आपने बीएचयू बस को ही ब्लॉक कर दिया।
अच्छा,
जब उसमें लाठीचार्ज के अगेंस्ट और सारा जो वीडियोस थे वो सब ब्लॉक कर देंगे, क्यों? वो सब तो सही थे ना, तो उसको क्यों गलत कहा जा रहा है?
तो ये जो अभी आपने कहा कि नेटवर्क बंद कर दिया गया था, नेटवर्क यहाँ वाईफाई है? महिला छात्रावासों में वाईफाई नहीं है?
अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले लगा है,
15 दिन प्रोटेस्ट हुआ था। ऐसा ही बहुत ज्यादा वायलेंस तो कहीं नहीं हुआ था, ऐसा ही प्रोटेस्ट उसके लिए भी हुआ था, डिमांड किया था, उसके बाद वाईफाई मिला है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि ये ब्लेम गेम ना हो। वायलेंस जो भी हो चुका है उसको हम सब कंडेम करते हैं और अब एक सॉल्यूशन के साथ।
वायलेंस नहीं किया था वो, पुलिस वाले आके उन्होंने जब उन्होंने लाठी चार्ज को उसके बाद ही जो बच्चे उग्र हुए उसके बाद ही
ये मतलब आप में से आप लोग भी धरने पे बाहर बैठे
मारे थे, यहाँ तक आके मारे थे। हम लोग यहीं थे,
हम लोग को बिल्कुल नहीं लगा था कि हम लोग तो एकदम सिक्योर फील कर रहे थे, यहीं पे खड़े थे सर। की
एक मेल कॉप लड़कियों को मार रहा है वो कहाँ तक जस्टिफाइड है, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं। कोई भी वहाँ पे फीमेल कॉप प्रेजेंट नहीं थी, मेल कॉप अंदर आके गेट के अंदर प्रिमाइस के अंदर आके मारा गया।
अच्छा, जो जिस वजह से ये सारा कुछ विवाद शुरू हुआ है, यहाँ बताया जाता है कि कैंपस के अंदर भी लड़कियों को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्या किस तरह की परेशानी कैंपस के स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, बाहर के करते हैं, कौन है?
ये तो हमें पता नहीं चल पाएगा वो कैंपस के हैं या बाहर के, लेकिन वो बाइकर्स आते हैं और शाम को कभी भी किसी भी वक्त वो लड़कियों को छेड़ते हैं। हम लोग उधर से जाते आते हैं तो इन सब चीजों को फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सिक्योरिटी हो जिससे इन सब चीजों का सोल्यूशन मिल जाए। लाइट
वी वेयर मेकिंग अ पीसफुल protest and we want only a safety measures for our girls because this is not only the individual girl matter.
जब भी हम लोग कभी यहाँ से रोड पे आते जाते रहते तो बहुत से ऐसे roads है जहाँ पे लाइट ही ढंग की नहीं है, तो वहाँ पे अंधेरे में हम लोग आते जाते रहते हैं। ग्रुप में भी आते तो होता क्या कि बाइकर्स आते हैं, कुछ भी करते हैं, तुरंत करते हैं, अचानक से आते करके निकल जाते हैं, तो हम लोग को पता नहीं रहता कि ऐसा हम लोग साथ होने वाला है। और अंधेरा रहता तो ना ही हम लोग उनकी शक्ल दिख पाते हैं और ना ही नंबर नोट कर पाते हैं।
बीएचयू की छात्राओं से बात कर रहे थे समीरा पद्मेश्वर। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2019 तक घर घर बिजली पहुंचाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले सौभाग्य योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में है ऐसे लोगों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा और जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल नहीं है उन्हें 500 रुपये में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना पर करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आइए सीधे चलते हैं और सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं।
घर की महिलाओं को भी अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है और इसलिए ज्यादातर महिलाओं पर दिन ढलने से पहले ही रसोई का काम खत्म करने का भी दबाव रहता है। घरों में रोशनी नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं तो इसका सीधा असर रास्तों की रोशनी पर भी पड़ता है। अंधेरे में घर से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है, विशेषकर महिला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट हम सुबह के कार्यक्रम नमस्कार भारत में सुनवाएंगे। मिशन 2019 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य निशाने पर कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी हैं। नई दिल्ली में हो रही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी के वंशवाद के बयान पर तीखा हमला बोला है। शाह ने कहा है कि राहुल गांधी देश की गरिमा व उपलब्धियों को नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं वो किसी वंशवाद के सहारे नहीं आए हैं। सरोज सिंह की रिपोर्ट।
दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन था। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यकारिणी को बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकारिणी की शुरुआत में बैठक को संबोधित किया। अपने भाषण में अमित शाह ने राहुल गांधी के वंशवाद वाले बयान का जवाब दिया। अमित शाह के भाषण की जानकारी देने रेल मंत्री पीयूष गोयल पत्रकारों के सामने आए और कहा कि भाजपा पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पे विश्वास रखती है, न कि वंशवाद में।
सर्वोच्च पदों पे जाने का अधिकार अपने मेरिट पे, अपने कार्य के बल पे पूरी तरीके से इस देश में है और भारतीय जनता पार्टी उस पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को इस देश में पूरी तरीके से सफल बनाएगी, बनाने का काम कर रही है। और जो राजनीति कांग्रेस और राहुल गांधी जी इस देश को देना चाहते हैं वंशवाद की, तुष्टीकरण की, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नकारती है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ये भी बताया कि अमित शाह ने बैठक में कहा है कि प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के सपने को हमें साकार करने की जरूरत है। न्यू इंडिया को परिभाषित करते हुए शाह ने कहा कि न्यू इंडिया ऐसा होगा जिसमें गंदगी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं होगी।
सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति से भारत मुक्त हो, इस प्रकार का न्यू इंडिया जो हर भारतीय का सपना है, जिसके साथ पूरा देश जुड़ा है, इस कार्य को पूरे देश में लेके जाना ये हर भारतीय जनता पार्टी के सरकार और कार्यकर्ता का निश्चय है, उनका प्रतिबद्ध संकल्प है। और इस काम में पूरी पार्टी अगले 5 वर्ष पूरी तरीके से देश भर में पार्टी का विस्तार, पार्टी के कार्य का विस्तार और जनता के हितों के कार्यों का विस्तार में हम सब लगने वाले हैं।
अमित शाह ने केरल और बंगाल में पिछले दिनों हुई हिंसा की निंदा भी की और कहा कि हिंसा से भाजपा डरने वाली नहीं, इसलिए 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केरल में पदयात्रा का आयोजन करेंगे। कार्यकारिणी में अलग अलग राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव पर कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए कहा गया। इसके लिए कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर सरकार के कामकाज पहुंचाने के लिए एकजुट होने का संदेश दिया गया। इस कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री बिजली से संबंधित नई योजना सौभाग्य को भी लॉन्च करेंगे।
देश में जो गांव बिजली से वंचित थे, मई 2018 तक हर गांव तक बिजली पहुंचेगी और आज शाम को 6:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री सौभाग्य एक नई स्कीम, जिसका आज आपने पेपर में इश्तिहार देखा होगा, उसको भी देश के समक्ष रखेंगे, जिससे देश में बिजली हर घर तक पहुंच सके, उसका कार्य भी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन शताब्दी के पावन अवसर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू करने जा रही है।
आमतौर पर बीजेपी की कार्यकारिणी में केवल पदाधिकारी ही शामिल होते हैं, लेकिन इस बार तमाम राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने भी इसमें हिस्सा लिया। सरोज सिंह, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना 3 दिवसीय प्रचार अभियान सौराष्ट्र क्षेत्र से शुरू किया है। राहुल अपने इस प्रचार अभियान के तहत खुली जीप में रोड शो करना चाहते थे, लेकिन राज्य पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने द्वारका के कृष्ण मंदिर में प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत की। हमारे साथी राजेश जोशी ने अहमदाबाद फोन कर वरिष्ठ पत्रकार आर.के. मिश्र से संपर्क किया और पूछा कि राहुल गांधी ने द्वारकाधीश से अपने अभियान की शुरुआत की है, इसका क्या राजनीतिक अर्थ निकाला जाए।
देखिए, गुजरात के संदर्भ में वैसे भी ये रहा है कि किसी चीज, कोई भी मुहिम या किसी चीज को, अच्छी चीज को शुरुआत करते हैं तो अपने रिलीजियस प्लेस की जगह धार्मिक स्थल से करते हैं। जैसे शंकर सिंह वाघेला ने भी कुछ दिन पहले शुरू किया तो वो भी वासणिया महादेव के मंदिर से निकले। दूसरी बात यह है कि द्वारकाधीश से शुरुआत हुई है, लेकिन ये जो 3 दिन की इनकी यात्रा है इसमें कई जो प्रमुख मंदिर आते हैं या रिलीजियस प्लेसेस आ रही हैं वहां पर ये माथा टेकेंगे। उसका एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रिलीजियस चीज को ज्यादा वो कर रही है तो एक सॉफ्ट, जिसे कहते हैं कि एक हल्का सा रिलीजियस लाइन भी इन्होंने भी रख दी है साथ में।
क्या ये माना जाए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी गुजरात में बिना धर्म को राजनीति में मिलाए सफल नहीं हो सकती है?
सफल नहीं हो सकती ये नहीं कहता, लेकिन वो एक उसको साथ लेकर के चलती है। गुजरात में जिस तरीके से उत्तर भारत में वगैरह में राम राम की कहने की प्रथा है, इसे यहाँ भी जय श्री कृष्ण कहा जाता है, तो रिलीजन इंटरवोवन है बाय एंड लार्ज सोसाइटी की लाइफ में
एक तरह से। क्या जो भारतीय जनता पार्टी का विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा, राजनीतिक एजेंडा था, कांग्रेस को एक तरह से मानने को मजबूर नहीं हो गई उसी एजेंडे को?
हाँ, मतलब थोड़ा तो आपको, चूंकि वो एक पूरे फैब्रिक में जो सोसाइटी का यहाँ का जो लाइफ है उसके अंदर जिस तरह से वो ताना बाना में भुन गया है, तो कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी राजनेता इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकता, उसको साथ लेकर के कहीं ना कहीं उसको चलना ही पड़ता है गुजरात।
अब हाँ। सवाल ये है कि क्या जो मुसलमान वोटर हैं गुजरात के, उनको एक तरह से एक संदेश देने के लिए क्या वो किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में, किसी मजार में जाने की हिम्मत कर पाएंगे?
अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो उनके शेड्यूल में ये कुछ आया नहीं, ये तो शुरुआती दौरा है, अभी ये देखने की बात है, तो वो आगे के वक्त ये बताएगा। मोदी साहब ने तो किया, शिंजो आबे जी को लेकर के गए,
मस्जिद में गए थे
जी, तो लेकिन जब वो गए थे तो वहाँ जो उनसे कनेक्टेड जो लोग थे, बाकी वो और किसी को हाजिर नहीं रखा गया।
राहुल गांधी ने जो द्वारकाधीश के मंदिर से अपनी यात्रा की शुरुआत की है, इसका राजनीतिक संदेश मुसलमानों के बीच में किस तरह का जाएगा?
ये इस चीज को कहीं ना कहीं बीच में, क्योंकि अभी तो शुरुआत हो रही है, इसको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेकअप जरूर करेंगे। देखिए वो एक सशक्त वोट बैंक है और यहाँ पर गुजरात में उनकी भी इम्पोर्टेंस है ही, उसमें कोई शक ही नहीं है।
वरिष्ठ पत्रकार आर के मिश्र से बात कर रहे थे राजेश जोशी। आज सोमवार है और आज के दिन आपके पत्रों के जवाब दिए जाते हैं,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का
और साथ में इंदु पांडे का।
इंदु पांडे, आप और हम लगता है काफी दिनों बाद चिट्ठियां साथ साथ प्रस्तुत कर रहे हैं।
जी।
मैं था रही और चिट्ठियां प्रस्तुत नहीं कर पाया, श्रोताओं से क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज आपकी बजाय अगर एक पहली चिट्ठी मैं ही पढ़ूं तो कैसे रहे?
जरूर जरूर,
आपकी इजाजत है। तो ये चिट्ठी खासतौर पर इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से हमें हमारे श्रोता ने लिखी है। उनका नाम है वामादेवन नायर और वामादेवन नायर साहब की खूबसूरती ये है, खासियत ये है कि उन्हें हिंदी लिखनी नहीं आती, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में यानी रोमन लिपि में हिंदी में चिट्ठी लिखी है। लिखते हैं, मान्यवर नमस्कार। अब आप कल्पना कीजिए, तमिलनाडु में गैर हिंदी भाषी हमारे श्रोता हमें हिंदी में चिट्ठी लिखना चाह रहे हैं, लेकिन अफसोस वो जता रहे हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती है इसलिए रोमन में लिख रहे हैं। उनकी एक शिकायत है और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है जब हिंदी दिवस था उस दिन।
जी,
लिखते हैं कि आज हिंदी दिवस है और मेरा एक सुझाव है कि आपके कार्यक्रम में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है। हालांकि मैं खुद हिंदी नहीं लिख पाता हूं, इसका मुझे अफसोस है, पर आपसे अपेक्षा ज़्यादा है। ये वामादेवन नायर साहब हमारी शिकायत कर रहे हैं और हमें आईना दिखा रहे हैं,
लेकिन ये हिंदी समझते हैं, ये बहुत अच्छी
बात है। समझते हैं, हिंदी कार्यक्रम सुनते हैं। अब आप बताइए कि हिंदी के कार्यक्रम में अंग्रेजी शब्दों का कितना प्रयोग करती हैं?
नहीं नहीं, मैं तो देखिए अभी आपकी राय में बिल्कुल प्रयोग नहीं करूंगी अंग्रेजी शब्दों का
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं वामादेवन नायर साहब कि जैसे कबीर ने कहा था, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, तो बहते पानी की तरह भाषा का इस्तेमाल किया जाए, वो हम चाहते हैं। उसमें कभी कभी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी होता है, उर्दू, फारसी, अरबी, चीनी, सभी शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी भाषा जो है वो तो प्रमुख है ही।
बिल्कुल, तो अब दूसरी चिट्ठी लें।
जी हाँ,
ये है विष्णु वर्मा ककोली फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा के बाद कहते हैं कि समाचारों और सामयिक घटनाक्रमों के प्रस्तुतीकरण को बीबीसी को प्राथमिकता देनी चाहिए।
ये भी हमारी एक तरह से आलोचना ही है, बहुत ही इन्होंने मुलायम ढंग से और कोमल ढंग से हमारी आलोचना की है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि कार्यक्रम किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, संपादकीय जो उसमें तीखापन है उसके साथ साथ प्रस्तुतिकरण भी बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ।
और एक चीज़ और इन्होंने बड़ी साफ तौर पे लिखी है कि गड़बड़ तब होती है जब कोई साप्ताहिक कार्यक्रम लोकप्रिय होने लगता है, तभी उस पर अचानक ब्रेक लग जाती है।
ये इनका इशारा दुनिया जहान की तरफ से है, उस पर ब्रेक ज़रूर लगा है लेकिन वो पूरी तरह से रुका नहीं है। हम बार बार अपने श्रोताओं को ये भरोसा दिलाते हैं कि दुनिया जहान शुरू होगा।
और ये हमारे पास चौथाई चिट्ठी बोलेंगे,
इस चिट्ठी की तारीफ तो आप बहुत देर से कर रही हैं, कागज के टुकड़े पे लिखी गई है, इसे मैं कहूंगा मोहब्बत की पाती।
तो ये मोहब्बत की पाती भेजी है अशोक सिंह कुशवाहा ने चुनार जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि दिन भर कार्यक्रम 13 तारीख का सुना और भारत की बंटवारे के समय छोटे छोटे सामानों का जो बंटवारा हुआ था उसकी जानकारी दी गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये मोहनलाल जी ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, मोहनलाल शर्मा ने उसका जिक्र कर रहे हैं।
बाद में लिखा है कि देश में कुछ लोग केवल मोदी एवं भाजपा की तारीफ सुनने के आदि हो गए हैं, उन्हें आलोचना या सरकार की असफलता सुनना अच्छा नहीं लगता,
इसीलिए वो बीबीसी की आलोचना करते हैं। ये भी इन्होंने आगे लिखा है क्योंकि मैं ये चिट्ठी पढ़ चुका हूँ। आपकी बात अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए चाहे वो आलोचना हो या प्रशंसा हो, हमें ध्यान रखना है अपने श्रोताओं का और पत्रकारिता का। जितना हम ऑब्जेक्टिव हो सके, यानी जितना वस्तु परख विश्लेषण हम चीजों का कर सकें, उतनी ही हमारी सफलता रहेगी।
बिल्कुल। और ये मेल भेजा है हमें राहुल कुमार ने, गांव काजी चक पोस्ट खजुरार, जिला पटना, बिहार से। लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी में हाल ही में नियुक्त लोगों के उच्चारण दोष की ओर ध्यान दिलाया।
बिल्कुल, इसकी तरफ हमारा ध्यान है। बहुत सारे नए साथियों को ये बार बार कहा जाता है कि उच्चारण का दोष नहीं होना चाहिए, और उसको वो दुरुस्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आपको एक फर्क महसूस होगा जरूर।
जद्दा सऊदी अरब से करुणेश कुमार ने लिखा है कि वैसे मैं करीब 25 बरस से बीबीसी हिंदी सुन रहा हूं, लेकिन ये मेरा दूसरा ईमेल है। इन्हें रविंद्र जैन पर केंद्रित कार्यक्रम संग संग गुनगुनाओगे बहुत पसंद आया।
बहुत बहुत धन्यवाद संग संग गुनगुनाओगे कार्यक्रम पर। और भी चिट्ठियां आई हैं, आप उनका सिर्फ अगर नाम दे दें तो समय बचेगा।
जरूर। किशनगंज बिहार से हैं, लिखने वाले हैं गौतम दत्ता। लिखते हैं ये भी कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा इनको, और इसके साथ साथ गणेश प्रसाद हुजादार हैं, इनको भी संग संग गुनगुनाओगे में यतीन्द्र मिश्र की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगती है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये कार्यक्रम सुनते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ आलोचनाएं भी इसकी होती हैं। इंदु जी, आप अगर देखें तो एक आलोचना की चिट्ठी भी है।
और अगला मेल है जालंधर से, कर्नल पीएस रंधावा ने पूछा है कि आजकल ब्रजेश उपाध्याय कहाँ हैं, उनकी वॉशिंगटन डायरी सुनने को नहीं मिलती, कब सुनाएंगे?
ब्रजेश उपाध्याय आजकल छुट्टी पर हैं और इसी वजह से वॉशिंगटन डायरी आप नहीं सुन पा रहे हैं।
और रंधावा साहब ने आगे लिखा है कि संग संग गुनगुनाओगे कार्यक्रम के बारे में कि बहुत फ्लैट सा था। मुझे याद है रेहान फजल ने जब ओपी नैयर पर विवेचना की थी तो बहुत ही अच्छी की थी, क्या ये प्रोग्राम ऐसा नहीं हो सकता?
देखिए, बहुत सारे हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं, आपको उतना पसंद नहीं आया, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को एक खास तरह का कार्यक्रम बनाना भी हम नहीं चाहते कि विवेचना का एक दूसरा स्वरूप हो जाए, ये भी नहीं हम चाहते हैं। तो बहरहाल आप सुनते रहिए और चिट्ठी लिखते रहिए। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk पे।
नमस्कार।
और अब एक नजर खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अगले महीने होने वाली सीरीज के लिए 9 सदस्यीय कोर टीम की घोषणा की, जिसमें ऑलराउंडर जिमी निशाम को जगह नहीं दी गई है। टीम में 6 अन्य खिलाड़ी न्यूजीलैंड ए टीम से जुड़े जाएंगे, जो अभी भारत का दौरा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर 3 वनडे खेलेगी, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर को मुंबई में होगी। इसके बाद 3 T20 मैचों की सीरीज भी होगी। भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भारतीय बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को पद्म भूषण अवार्ड के लिए सिफारिश भेजी है। सिंधु ने पिछले साल रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। हाल ही में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पद्म भूषण अवार्ड के लिए महेंद्र सिंह धोनी के नाम की भी सिफारिश की थी। सिंधु ने सितंबर में कोरिया ओपन का अपना 3रा खिताब जीता। मौजूदा वक्त में सिंधु दुनिया की नंबर 2 की पोजीशन पर हैं। कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुए मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया, और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया अब वनडे में भी नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई है। और अगर हम बात करें टेनिस की, तो दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी रोजर फेडरर ने सुपर टाई ब्रेक में निक किर्गियोस को हराकर पहले लावेर कप टेनिस टूर्नामेंट में टीम यूरोप को विश्व टीम पर जीत दिलाई। इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन और विमिल्डन का खिताब जीतने वाले फेडरर ने 4-6, 7-6, 11-9 की जीत से टीम यूरोप को कल 15-9 से जीत दिलाई। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन समाप्त हो गया है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। अमरीकी विश्वविद्यालय की एक शोध छात्रा से बलात्कार के आरोपी फिल्म निर्देशक महमूद फारूकी को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने कहा है कि उनके जो मतदाता साथ छोड़कर धुर दक्षिणपंथी पार्टी की ओर गए हैं, वो उनको वापस लाना चाहेंगी। एक समय दुनिया की सबसे वजनी महिला माने जाने वाली मिस्र की ऐमान अहमद अब्द अल अती का आज निधन हो गया। एक समय उनका वजन तकरीबन 500 किलो था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि क्रीमिया प्रायद्वीप पर 2014 में रूस के अधिग्रहण के बाद मानवाधिकार परिस्थितियाँ काफ़ी खराब हुई हैं। इराकी कुर्दिस्तान में स्वतंत्रता के लिए होने वाले विवादास्पद जनमत संग्रह के मद्देनजर ईरान ने कुर्दिस्तान से लगी सीमा को बंद कर दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। कार्यक्रम तक पहुंचाने में मदद की अजीत सारथी ने, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।